टॉक शो में जरूर शामिल हो।
रोस्टेड चिकन वर्ल्ड्स बेस्ट स्पाइसी चिकन अलबैक स्टाइल, बेस्ट चिकन सैंडविचेस इन GTA, 50% लेस ग्रीसी एंड ऑयली। रोस्टेड चिकन इज लोकेटेड एट 1758 लॉरेंस एवेन्यू ईस्ट एट विक्टोरिया पार्क। डिलीवरी अवेलेबल विद ऊबर, DoorDash, स्किप द डिशेस। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 6477483444, दैट इज 6477483444।
शीला के हस्बैंड को देखो, सारा दिन एक्टिव रहते हैं, दिन भर ऑफिस में काम और रात को शीला के साथ हैप्पी मोमेंट्स एंजॉय करते हैं। और एक हमारे नवाब साहब हैं, ऑलवेज लेजी।
एक्सक्यूज मी मैडम, आपके हस्बैंड को चाहिए SBM का रेजुना, जो एलिमिनेट करता है टॉक्सिन्स एंड इम्प्योरिटीज बिना किसी भी साइड इफेक्ट के। फॉर मोर इन्फो कॉल अशोक ऑफ SBM आयुर कैनेडा 905-790-7734 और विजिट एट एयरपोर्ट एंड सैंडलवुड कॉर्नर प्लाजा यूनिट 15 ब्रैम्पटन। रेजुना अब रोजाना।
अब मॉर्गेज लेना और भी आसान, सेंट्रम फ्यूचर मॉर्गेज ग्रुप के काकब जावेद को कॉल करें। प्राइवेट मॉर्गेज फॉर एनी पर्पसेस, कमर्शियल मॉर्गेज, इंडस्ट्रियल मॉर्गेज, फार्म एंड हॉबी फार्म, वेरी कंपैरेबल रेट्स फॉर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मॉर्गेज, न्यू कमर्स टू कनाडा, फर्स्ट टाइम बायर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड, रीफाइनेंसिंग, डेब्ट कंसोलिडेशन, असिस्ट इन रियल एस्टेट। He will make mortgage easy for you. Kokab Javed, Mortgage Agent, 416-454-6065.
Grill and Chick, delicious and healthy grilled chicken and rotisserie chicken sandwiches, burgers, wings, squares, popcorn chicken, salad, garlic bread, sweet dishes. आपने पहुंचना 15 Montpelier Street, Brampton, Mississauga Road and Financial Drive, Commercial Intersection, Grill and Chick, 905-456-0500, Grill and Chick.
क्या आप एक कार एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं और आपको बेहतरीन लॉयर की तलाश है? हेमोफार प्रेजेंस की आपके लिए एक जाना पहचाना लॉयर है और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपके मसलों को उन तक पहुंचाती हूं। हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। कार एक्सीडेंट में आपका मशवरा लेना आपका कानूनी हक है। आप हमें कॉल कर सकते हैं 416-570-0157। जी हाँ, 416-570-0157।
Ayyo, who is the stager?
Complete home furniture and appliances, latest style, color, fabric, golden, ya phir silver, modern, traditional, contemporary furniture and decor. Complete home furniture and appliances. Must see, must visit a designer's collection and affordable price.
Seeing is believing. Complete home furniture and appliances.
No cost, free advice. 547 Steeles Avenue East in Brampton. 905-244-4663. 244-4663.
ट्रक का घूमता पहिया कनाडा की मईशत की तरक्की का जामिन। आपका ट्रक सड़कों पर राज करे और कनाडा की मईशत तरक्की की राह पर गामजन रहे। ट्रक मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक, ट्रक की बेहतरीन सर्विस के लिए क्विक ट्रक ल्यू थ्रू आउट ऑन्टेरियो, नो अपॉइंटमेंट नीडेड, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, वन स्टॉप शॉप। अब तीसरी लोकेशन एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नैपनी। क्विक ट्रक ल्यू 519-622-0660, quicktrucklube.com।
अगर आपको पर्सनल ऑटो या होम इंश्योरेंस चाहिए तो बिल्कुल ना घबराएं। कॉल करें ऑल स्टेट के मोहम्मद सिद्दीकी को, जिनके पास बहुत साल का इंश्योरेंस और सेल एक्सपीरियंस है। कॉल फॉर फ्री कोड एंड फाइंड आउट हाउ यू कैन सेव अप टू 30% ऑन ऑटो इंश्योरेंस। कॉल मोहम्मद सिद्दीकी 6472035546, 6472035546।
कहते हैं कि माया को खींचे माया कर कर लंबे हाथ। हैरिसन द मेजेस्टिक मॉर्गेजेस के साथ रेजिडेंशियल, कमर्शियल मॉर्गेज, रीफाइनेंसिंग आपने करनी है, किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है, सारे बैंकर्स और लेंडर्स के साथ डीप ताल्लुक आता है इनके। आपको फाइनेंसिंग का बंदोबस्त भी हो जाएगा और चार्जेस भी कोई नहीं देने पड़ेंगे। हैरिसन जी बड़ी कमाल की तिकड़म लड़ा सकते हैं। बस आप कॉल कर लीजिए और पैसे का अरेंज हो जाएगा। $228 से $1000 महीना कैसे बचा सकते हैं? कॉल हैरिसन Now 6472281000 Harry Sond of Majestic Mortgages.
HearMax लेकर आए हैं अल्टीमेट हियरिंग सॉल्यूशन विद वर्ल्ड स्मॉलेस्ट एडवांस्ड एंड डिजिटल हियरिंग एड्स, वो भी सबसे कम कीमत में। किसी भी हियरिंग एड की खरीदारी पर बिना किसी फिकर के 3 साल की वारंटी भी हासिल कीजिए। फ्री नो ऑब्लिगेशन हियरिंग टेस्ट के लिए आज ही कॉल कीजिए HearMax। सर्व करते हैं GTA में 2 लोकेशन से,
जेन एग्लिंटन या फिर दंदास एरंडेल के इंटरसेक्शन पर। 4167928792 HearMax 4167928792।
टेली टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स LEDs और होम अप्लायंसेस की हॉटेस्ट और ब्रांडेड रेंज के साथ 0% फाइनेंस गारंटी और लोएस्ट प्राइसेस और फ्री डिलीवरी इन GTA। तो इंतजार कैसा, अभी विजिट करें टेली टाइम ब्रैम्पटन 280 रदरफोर्ड रोड या स्प्रिंगडेल स्क्वायर शॉपिंग सेंटर या इटोबिको 1770 एल्बियन रोड या 9909 मार्कम रोड। मज़ीद तफ़सीलात के लिए कॉल करें 9054551666। टेली टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स।
मेरी हर सुबह रहेगी तेरी हर शाम के साथ।
एशियन फूड सेंटर 9057931338। आपके किचन की तमाम जरूरियात एक ही छत तले। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ग्रोसरीज एंड स्टिफल्स, ब्रेड, डेयरी एंड एग, बेवरेज एंड कन्फेक्शनरी, ब्रांडेड फूड्स, पर्सनल केयर एंड हाउसहोल्ड, स्वीट्स एंड समोसास, Order now for in-store free pickup. 905-793-1338. Home delivery is also available. Asian Food Center. 905-793-1338. Asian Food Center.
क्या आपकी पॉलिसी इस पेंडेमिक में आपको कवर कर रही है? मालूम कीजिए मुझसे कांटेक्ट करके. मैं हूं फजल वदूद इंश्योर प्रो फाइनेंशियल सर्विसेज से. मेरा नंबर है 905-607-5000. 27 साल का इंश्योरेंस और अंडरराइटिंग का मेरा एक्सपीरियंस है. मैं मेक श्योर करूंगा कि आपको एक ऐसा प्लान दिलवाया जाए जो कि बेहतरीन हो और गारंटेड लोएस्ट रेट पे हो. कॉल कीजिए 905-607-5000. और हाँ, हर जुमेरात शाम को चैनल 770 पे मेरा प्रोग्राम सुनना ना भूलिएगा, जिसमें हम आपसे शेयर करते हैं बेहतरीन टिप्स इंश्योरेंस के बारे में.
जी हाँ, तैयार हैं आप लोग?
जी जी,
हम तैयार हैं. एंड मेरा ख्याल एक मिनट और दो सेकंड ज्यादा होगा. दैट्स ओके, यार बड़े शहरों में ऐसा हुआ करता है. जी साहब, वक्त हुआ है, म्यूजिक सुन लिया आपने. एंड शाजी जी मेरे सामने बैठी हुई हैं. एंड लिए चलेंगे आपको पाकिस्तान, हिंदुस्तान और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरें. यहाँ पर टोरंटो, ओंटारियो एंड कनाडा में क्या हो रहा है, हर चीज से बाखबर कर देंगे हम आपको. छह बजे तक हम आपके साथ रहेंगे. और शाजी जी, अस्सलाम वालेकुम.
वालेकुम सलाम भाई, कैसी क्या हाल है? दिन ब दिन मुझे लग रहा है आप कोई वो रीसर्फेसिंग या कुछ करा रहे हैं. आपका चेहरा तो चमकता जा रहा है, ये क्या चल रहा
है? अल्हम्दुलिल्लाह,
खूबसूरत होते जा रहे हैं आप.
आप मुझे शर्मिंदा ना करें.
इसी तरह एक लड़की थी ना, तो उसने अपने वो बॉयफ्रेंड को कहा, उसने कहा कि तुम जो है वो नहीं, उस लड़के ने उसको कहा, मासूम था ना बहुत.
हाँ.
उसको लगता था ये लड़की मेरे लिए, मेरे पीछे इसलिए कि मैं बड़ा हैंडसम हूँ.
हाँ.
बड़ा खूबसूरत हूँ मैं.
हाँ.
तो उसने कहा कि
हाँ.
मैं खूबसूरत हूँ.
हाँ,
तो उस लड़की ने कहा कि अगर तुम खूबसूरत हो ना, तो ये जो मैं लिख रही हूँ ना, ये जैसे ही तुम पढ़ोगे, अगर तुम खूबसूरत ना हुए तो तुम 5 सेकंड में मर जाओगे.
अच्छा.
तो उस पर लिखा हुआ था आई लव यू. तो उसने पढ़ा, उसको कहने लगा आई लव यू. तो फिर देखता रहा घड़ी, कहता 5 सेकंड तो हो गया, मैं मरा नहीं. कहते मां सद के जाए, तुम्हें किसने कहा तुम खूबसूरत हो? देख ले मजीद भाई, देखे लड़कियां किसी
किसी तरीके से, किस एंगल से उसको पकड़ा है बेचारे को, किस एंगल से पकड़ा है.
अपना चांद कहती होगी उसको, देखो मिट्टी प्लीत कर दी,
मिट्टी प्लीत हो गई जी.
देख ले आप, मजीद भाई एक था ना, एक मासूम मासूम लड़के हमारे बहुत मासूम,
बड़े मासूम है,
लड़कियां बहुत तेज हो गई.
हाँ जी.
तो वो एक मासूम लड़का था ना, तो उसने कहा, बस स्टैंड पे खड़ी थी लड़कियों को, कहा जी सुनिए. तो उन्होंने कहा कि आगे से जो लड़की थी वो बड़ा वो हो गई. उन्होंने कहा अच्छा इसको मैं सबक सिखाती हूँ. कहती हैं जी भाईजान बोले. कहते बस बाजी उनसे गाली मुक गई.
भाईजानी कह
दिया बस खत्म हो गई, मामला
ही
खत्म है.
भाईजान हो गया, बस
भाईजान हो गया.
अब तो रिश्ता ही दूसरा हो गया.
दूसरा हो गया. हम क्या की गल करनी है, हम छोड़ो तुझे.
और पाकिस्तानी गल्ला करो.
पाकिस्तानी गल्ला करो. पाकिस्तानी था ना पहलवान था, तो उसके पास कोई गया, तो वो गुजरांवाला का पहलवान था. वो तो आपको पता है कैसे खाते हैं.
हाँ जी.
तो उसने कहा भाई जो बंदा खाता है ना,
हाँ जी,
उसको ना तो कुत्ता काटता है, ना उसके घर में चोरी होती है, और ना ही उसका एक्सीडेंट होता है.
अच्छा, वो कैसे?
अच्छा, तो वो वहाँ पे उन्होंने कहा जी ये तो पहलवान साहब ने बड़ा ज्ञान दे दिया.
हाँ जी.
तो उन्होंने कहा जी पहलवान साहब के उसको कुत्ता क्यों नहीं काटता?
हाँ.
और कहते हैं जी इसलिए कि कुत्ता इसलिए नहीं काटता कि वो इतना मोटा हो जाता है कि कुत्ता चक्कर ही लगाता रहता.
कहाँ से शुरू करूँ?
कहता मैं कहाँ से काटूं भाई. अच्छा, उसके घर में थेफ्ट इसलिए नहीं होता, उसके घर में चोरी इसलिए नहीं होती क्योंकि वो जब खाता रहता है तो उसका पेट जो है इतना फूला रहता है कि उसको रात को नींद नहीं आती.
हाँ.
तो वो तो जागता रहता है, तो चोर ने कैसे आके उसके घर में?
वो भी पहलवान के घर में.
वो भी पहलवान के घर में.
हाँ जी.
ठीक है जी. अच्छा. हाँ. जी, फिर तीसरा उन्होंने कहा जी एक्सीडेंट क्यों नहीं उसका होता?
हाँ.
वो कहते हैं जी एक्सीडेंट इसलिए नहीं होता क्योंकि उसके गोडे गुटों में पानी बैठ जाता है चावल खा खा के. तो वो तो जो घर से निकलेगा नहीं, बिस्तर पे लेटा रहेगा,
एक्सीडेंट कैसे होगा वो? जी
देख ले माजिद भाई.
अब आज से क्या है, खाना पीना शुरू करो जी.
हाँ बिल्कुल माजिद भाई,
खाना पीना शुरू करो जी.
खाना पीना शुरू करें.
हाँ जी
बिल्कुल. देखिए माजिद भाई, खाने पीने वाले भी जो है ना वो जल्दी मर जाते हैं. अब तो खाने पीने वाले शायद देर से मरते हैं, जो ज्यादा कम खाते हैं ना हर वक्त वो करते रहते हैं। अब आप देखें, अब आप श्रीदेवी की बेचारी की मिसाल देखें, पतली दुबली सी इतनी सी, और आप देखें जरा, और हम जैसे खाने पीने वाले हैं हटे कटे जो हैं, अभी तक जो है अभी कोरोने भी हो गए, कितने कोरोना
कोरोना भी भाग गया,
कोरोना भी भाग गया,
हाँ जी हमें नहीं चाहिए,
हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ
जी
पाकिस्तानी,
हाँ जी कोरोने भी कह रहे हैं जी, हमने नहीं भाई
कोरोने पड़े हुए हैं, किस किस कौम से टक्कर ली है मैंने,
हाँ जी हमसे टक्कर नहीं लेते वो,
हाँ जी
हमसे टक्कर नहीं लेते जी वो, हमसे टक्कर लेके वो
बस ये जो है ना
कोरोना ने मर जाना है,
कोरोना ने मर, वो मरी गया पाकिस्तान में,
हाँ जी खत्म,
लोग कहते हैं हमें नजर ही नहीं आ रहा, हाँ जी ठीक है ना,
ठीक है जी।
अच्छा जी, अच्छा जनाब हम आपको कहते हैं जी हमारे, आप न सिर्फ ये कि आप हमारी देखें जो स्पॉन्सर्स हैं उनको आप थोड़ा सपोर्ट करें, बल्कि हम कहते हैं हमारी वेबसाइट देखें और हमारे टीवी के प्रोग्राम्स देखें। और कल था मंडे का दिन, कल था मंडे के दिन में मजदूरी, आपको पता है बड़ा जबरदस्त एंटरटेनमेंट का शो बनता है, अतरुल गाजी के बाद आता है 10:45 पे, तो वो बहुत अच्छा था कल, लोगों ने बड़ा पसंद किया उसको, बहुत उन्होंने कहा अच्छा। अब तो खैर ओटीटी प्लेटफॉर्म पे काफी फिल्में, यानी मतलब कुछ चीजें रिलीज होने लगी हैं, तो आप उनको देख सकते हैं और उसके लिए जो है आप एंजॉय कर सकते हैं। और उससे पहले ही हम आपको खबर दे देते हैं कि कौन कौन सी फिल्में, कौन कौन से ड्रामे, सीरीज, वेब सीरीज आने वाली हैं, तो आप अगर हमारा एंटरटेनमेंट का शो देखेंगे तो बिल्कुल वो रहेंगे। और जनाब हमारी जो वेबसाइट है, वेबसाइट थोड़ी सी रीवैम्प हो गई है जनाब, तो उसमें कुछ चीजें आपको शायद नजर आ रही हैं, कुछ चीजें और थोड़े दिनों में आपको नजर आएंगी, तो
सबर सबर का फल,
हाँ मीठा होता है, बहुत ही ज्यादा
मीठा,
सबर का फल आम होता है,
सबर का फल पाकिस्तानी आम है,
पाकिस्तानी आम है, हाँ जी। तो अब ये जो नई वेबसाइट है, इसमें जैसे हमने आपको बताया था लाइव टीवी और लाइव रेडियो दोनों ही ऊपर टॉप पे चले गए हैं, ठीक है जी। तो ऊपर आप देख सकते हैं, उसके बाद आप ब्रेकिंग न्यूज देख सकते हैं, फिर उसके बाद आप जो है लोकल खबरें देख सकते हैं, और उर्दू का बहुत बड़ा सेक्शन जो है उस पर क्लिक करेंगे वो आपको नजर आएंगी, हेल्थ, मेडिसिन, लाइफस्टाइल, एंटरटेनमेंट के आपको सेगमेंट्स नजर आएंगे, और राइट साइड पे आपको नजर आएगी हमारी सारी जो स्पॉन्सर्स की लिस्ट है वो, तो आप उनके ऊपर क्लिक करके तो आप नंबर ले सकते हैं और उनको कॉल कर सकते हैं, ठीक है जनाब। तो हम आपको अपने कुछ जो स्पॉन्सर्स हैं उनके हम आपको पैगाम देते हैं, और ये हैं हमारे ब्रोस्टर चिकन अलबेक स्टाइल, बहुत जबरदस्त सैंडविचेस बनाते हैं, वो कहते हैं कि ऐसे सैंडविचेस जीटीए में और कोई भी नहीं बनाता है, यानी कि बर्गर्स ऑफकोर्स। तो आप इनको अगर ऑर्डर डालना चाहते हैं तो इनका एड्रेस है 1758 लॉरेंस एवेन्यू ईस्ट कार्ब्रो, इनका नंबर है 6477483444, और स्किप द डिशेज, डोर डैश और ऊबर ईट से आप इनके खाने मंगवा सकते हैं। और जनाब हॉटस्टार एनुअल सब्सक्रिप्शन जो है सिर्फ $45 है, अगर आप ई आवाज जो है प्रोमो कोड डालेंगे, और जो है आप इनको विजिट कर सकते हैं ऑन hotstar.com/CA, और बहुत सारा पंजाबी कंटेंट आ गया है, बहुत सारी खबरें, बहुत सारा क्रिकेट आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा अगर आपको अच्छी गड्डी चाहिए, जैसी कि माजिद भाई के पास है ना, वो तो खैर मुश्किल है, लेकिन अगर आपको और उसके अलावा कोई अच्छी गड्डी चाहिए,
अच्छी गड्डी चाहिए,
वैसे माजिद भाई जो है अपनी गाड़ी मेरी फरारी के साथ लाके खड़ा कर लेते हैं,
क्या बात है,
माजिद भाई समझते हैं कि माजिद भाई के पास भी फरारी है मेरी जरा भी, बस वो जो है शोशा के लिए वो लोगों को बताना चाहते हैं कि मैं भी यहां से गुजर के आ रहा हूं तो शायद ये फरारी मेरी है, तो इसलिए, लेकिन वो फरारी माजिद भाई की नहीं है, वो मेरी है। तो अगर आपको उसके अलावा कोई गाड़ियां चाहिए तो आपको शाह अहमद जी के पास जाना पड़ेगा रेक्सल हॉन्डे पे, तो इनका नंबर है 4168172720, 4168172720। विंटर सेल बहुत जबरदस्त चल रही है, तो आपको बहुत अच्छी यहां पे डील मिल सकती है। इसके अलावा रिजूना आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, अगर आपकी कोई भी इस तरह की बीमारी है जो दूसरी दवाइयों से आपको रिएक्शन हो रहे हैं, आप ठीक नहीं हो रहे हैं, तो आप इनकी आयुर्वेदा जो ट्रीटमेंट है वो ले सकते हैं। इनका नंबर है 9054।
जी साहब, तो चलिए आप पूरे कार्यक्रम की तरफ चलते हैं। एंड शाह जी
जी मजद भाई, कल आपने मुझे कहा नहीं ये फ्रांस में हुआ है, ये कनाडा में नहीं हुआ मजद भाई, और मैंने कहा कि यार वाकई मैं जो है कोई 15-20 कोई अखबार पढ़ती हूँ, चैनल देखती हूँ, तो शायद मैंने मिक्सअप कर लिया, नहीं मैंने मिक्सअप नहीं किया था। کینیڈا کی جو نیشنل ایڈوائزری کمیٹی آن ایمونائزیشن ہے اس نے کہا ہے کہ 65 اینڈ ابو کے لیے ایسٹرا زینیکا نہیں ہے.
اس کی وجہ بتاؤں میں آپ کو. اس کی وجہ یہ ہے
کہ فرانس نے کہا
ہے. ہاں انہوں نے جو یورپ میں کہہ دیا گیا. اب وہ ریزن کیا دے رہے ہیں وہ کہ ان کے پاس پورا ڈیٹا 65 اینڈ اوور کا نہیں آیا ہے.
ایفیکیسی کا ڈیٹا نہیں ہے.
ایفیکیسی کا ڈیٹا نہیں آیا ہے. یہ نہیں کہ وہ خراب ہے اس پہ لگا نہیں سکتے آپ, لگائیں گے تو کچھ ریئیکشن ہو جائے گا. اٹ از جسٹ دیٹ ابھی ان کے پاس اس کا ڈیٹا, یہ کہتے ہیں کہ جو ہمیں سیٹسفائی کرنے والا ڈیٹا ہے نا, انہوں نے ڈیٹا تو دیا ہے اس کا, مگر جو ہمیں سیٹسفائی کرنے والا ڈیٹا ہے وہ ڈیٹا ہمیں پورا نہیں ملا ہے. اس کی وجہ سے پریکاشنری طور پہ ہم اس کو ابھی 65 اینڈ اوور کو
ریکمینڈ نہیں کریں.
ریکمینڈ نہیں,
یس ریکمینڈ نہیں کریں. جیسے کہ آج اگر آپ ہیلتھ کینیڈا کی سائٹ پہ دیکھیں یا کہ اگر آپ نیشنل ایڈوائزری کمیٹی آف آن ایمونائزیشن کی سائٹ پہ دیکھیں تو وہاں پہ بہت کلیئرلی موڈرنا کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ موڈرنا کو ہم نے یہ ڈیٹا دیکھنے کے بعد اپروول دیا تھا کیونکہ اس کی ایفیکیسی ہمارے پاس جو تھی وہ تھی کہ ایٹ لیسٹ 65 ٹو اور کچھ لوگوں میں تو 80% بھی جو ہے وہ کرتی ہے, اس لیے ہم نے اس کو ایمرجنسی یوز کے لیے کینیڈا کے اندر.
اب جو جانسن جانسن کی آ رہی ہے وہ تو صحیح ہے سب لوگوں کے لیے اور اس کا صرف ایک شاٹ لگے گا. انڈیا کی ایک کمپنی ہے بھارت بایو,
بھارت بایو ٹیک,
اوکے, جو انہوں نے جو بنائی ہے کوویکسین ہے نا, تو وہ جو ہے وہ بچوں کو بھی دی جا سکتی ہے.
یس یس دیٹس رائٹ. یہ ہم نے پہلے خبر دی تھی کوئی مہینہ پہلے کہ اس وقت آدھار پونے والے جو تھے کہ سیرم انسٹیٹیوٹ سے کہہ رہے تھے کہ ہمارا ٹائی اپ جو ہے وہ ایسٹرا زینیکا آکسفرڈ کے ساتھ ہے, تو آپ ہماری ویکسین کو اپروو کریں کیونکہ ہم تو گوروں کے ساتھ مل کے بنا رہے ہیں اور ان کے یہ ساری ریسرچ ہے. بھارت بایو ٹیک کا جو لڑائی تھی وہ یہی تھی, وہ کہتے تھے بی جے پی کی گورنمنٹ کو کہ بھارت بایو ٹیک کی جو میڈیسن ہے دیٹ از انڈیجنسلی ڈیولپڈ, تو انسٹیڈ کہ آپ سیرم انسٹیٹیوٹ کا جو ایسٹرا زینیکا اور آکسفرڈ کی ویکسین کو آپ اپروول دے رہے ہیں, آپ اپنی انڈیجنسلی ڈیولپڈ جو میڈیسن ہے اس کے لیے آپ جو ہے
اور جو انڈیا کے پرائم منسٹر ہیں
جی
مودی صاحب
جی,
تو مودی صاحب نے بھی جو ہے کوویکسین,
یس یس یس, بھارت بایو ٹیک کی لیے
exactly.
yes, انہوں نے لیا جی بالکل. تو یہ دونوں اس کے بیچ میں تھا اور وہ تھی بہرحال اینی ویز. تو لیکن ہوا وہی ہے ماجد بھائی کہ گورے کی جو دوائی ہے وہ اپروو ہو گئی ہے اور بھارت بایو ٹیک کی ابھی تک بھی اپروول ایز سچ میس امیونائزیشن کے لیے نہیں آیا ہے, لیکن ایمرجنسی اسٹیج میں اور انہوں نے کہا جی ہم نے اپنا ڈیٹا دے دیا ہے وہ جو ہیلتھ منسٹری ہے انڈیا میں, تو ہمیں لگتا ہے کہ جلدی جو ہے وہ بھی اپروول اس میں ہو جائے گی. ہاں جی بالکل ٹھیک. اچھا جی تو یہ تھا جناب, وہ مجھے کل نام نہیں تھا یاد رہا, سو نیشنل ایڈوائزری کمیٹی آن امیونائزیشن انہوں نے جناب یہ کہا. اچھا جناب کینیڈا کی جو پبلک ہیلتھ آفیسر ہیں ڈاکٹر تھریسا ٹیم, انہوں نے آج بڑا کنسرن شو کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے ملک میں اب جو ہے جو ویریئنٹس آ گئے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ نیکسٹ ٹو منتھس میں یہ جو ویریئنٹس ہیں یہ ڈومینیٹ کر جائیں گے, اور ان میں سے ایک ویریئنٹ جو ہے وہ تو ایسا ہے کہ جس کے اوپر اثر نہیں کریں گی شاید کچھ دوائیاں کچھ ویکسینز. تو یہ بڑا جی کنسرن آج آ گیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے سارے پروٹوکولز اور ایس او پیز کو فالو نہ کیا تو پھر یہ مشکل آ سکتی ہے.
کیا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں؟
وہ کہتے ہیں ہمارے ہاسپٹلائزیشن جو ہیں وہ بھی اوور ویلمنگ.
لیٹ می آسک یو کوسچن, پاکستان میں یہ ویریئنٹس نہیں پہنچے؟
احمد بھائی پاکستان میں اگر پہنچے بھی ہیں نا تو بچ بچا کے پتلی گلی سے وہ نکل رہے ہیں, کہہ رہے ہیں پاکستانیوں کے اوپر بھائی اب کیا ہوئے گا. میں نے آپ کو احمد بھائی کل کیا سنایا تھا, دیکھیں آپ میری باتیں نا غور سے سنتے نہیں ہیں. میں نے آپ کو بتایا ہے پورا یورپین یونین دو نمبر دوائیاں یوز کر رہا ہے پاکستان سے امپریس ہو کے, سمجھ آئیے آپ کو. جو لال مرچیں وہ بیچ رہے ہیں اس کے اندر جو ہے لال اینٹوں کا برادہ مکس کر کے بیچ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ جو وہاں پہ جو بھی پانی کلین ایئر اور کلین واٹر وہ سب ختم کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں گندا پانی ان کو پلاؤ لوگوں کو اور فضا کو اور گندا کرو
اپنے امیون سسٹم کو صحیح کر رہے ہیں.
سسٹم کو صحیح کرنے کے لیے جی ماجد,
امیون سسٹم کو صحیح کر لیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے اپنے آپ ہی ختم ہو جائے گی.
آپ نے کبھی پشاور میں جا کے چپل کباب کھائے ہیں کبھی؟
کیا بات ہے.
ہاں وہ جو چپل کباب لڑکا بنا رہا ہوتا ہے نا, وہ جو جس کے اتنے اتنے بڑے ہاتھ ہوتے ہیں, وہ ہمارے خان صاحب کے جو بنا رہا ہوتا ہے, اس کے ہاتھوں کے اوپر اتنی اتنی جو ہے نا دو دو انچ کالے رنگ کی جو ہے نا وہ میل لگی ہوتی ہے, تو اس سے وہ بنا رہا ہوتا ہے چپل کباب, تو وہ ہم نے کھائے ہیں, اس لیے ہمیں یہ کرونے شرونے کچھ نہیں کہتے.
پانی پوری کھائی کبھی آپ نے؟
ہاں پانی پوری ہم نے کھائی ہے, ہم نے ٹھیلے کے وہ جو ہے دہی بڑے کھائے ہیں.
ہاں بس,
ہاں تو اس لیے ماجد بھائی کوئی ویریئنٹ پاکستانیوں
پر یہاں پر جو ہے نا ہم لوگ
کلین ایئر کلین واٹر
वहाँ पर जो ये जो आपने बताया था ठेले पे जो चीजें आपने दही बड़े
मक्खियां कितनी बैठी
हैं छोले और दही बड़े और चाट वगैरह जो खाई है ना, अच्छा उनके पास आपने कभी नोटिस किया हो कि सिर्फ एक बाल्टी का पानी होता है
हाँ।
भाई वो तो ये जाके लेके नहीं जा सकते कहीं से, तो उनके पास सिर्फ एक बाल्टी का पानी
जी, 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 जी।
आप शाजिया जी आपने खाया
जी, उसी में धोया
उसी को उन्होंने उसमें डाल के धोया बाहर निकाला दूसरे को दिया, उसको सफाई भी नहीं उसको वो भी नहीं करते, वो ड्राई नहीं करते उसको,
नो, नो, नो,
उसी में डाल के दिया, टाइम थोड़ी है इतना
टाइम थोड़ी है।
और फिर मैंने जाके वहां खाया तो मेरी भी उन्होंने उसी में सफाई की और दे दिया, तो ये इम्यून सिस्टम जो है बहुत बस
यस माजिद भाई, तो इसीलिए तो हम यूनिक हैं, इसीलिए तो हम यूनिक हैं, आज आपको पता नहीं
आपने
है।
गन्ने का रस पिया है हाँ। गन्ने के रस में कराची में जो गन्ने का रस बड़ा
उसमें मक्खियां भी जो होती है ना वो भी पिस रही होती है
सैकड़ों की तादाद में,
यस
सैकड़ों की तादाद में मक्खियां उसमें जा रही होती है, तो आप अब ये बताएं कि हमारा इम्यून सिस्टम क्यों सही नहीं होगा।
ये जो मक्खियां है ना मक्खियों पे आपने मुझे इशफाक अहमद साहब याद करा दिए,
अच्छा जी
कोई बैठा हुआ था सियाणा इशफाक अहमद साहब के पास,
अच्छा।
आपको पता ना इशफाक साहब तो बड़े स्कॉलर थे, तो किसी ने इशफाक साहब को कहा, उन्होंने कहा जी इशफाक साहब आपको क्या पता है क्या क्या तखलीक अल्लाह ने की हुई है, ये जो मक्खी है जैसे फॉर एग्जाम्पल इसकी तो 100 आंखें होती हैं, तो इशफाक साहब ने बड़ा एक मतलब है सूफियाना बात की, उन्होंने कहा मुझे बड़ा अफसोस है कि अगर मक्खी की 100 आंखें हैं फिर भी वो जाके गंदगी पे बैठती है, और इंसान को देखो कि रब को पहचानने के लिए जो समझदार इंसान है उसकी एक ही आंख काफी है।
क्या बात है जी, क्या बात है, क्या बात है जी,
है जी
क्या बात है।
तो मक्खियों को आपने मुझे करके छेड़ दिया आपने मुझे मक्खियों का जिक्र करके छेड़े ना मुझे सही मुझे
मक्खियों का जिक्र खत्म,
मक्खियों का जिक्र खत्म करें आप, छेड़ना नहीं है मुझे, ठीक है जी। अच्छा जना तो ये हुआ, अच्छा जनाब आज जो है जी बड़ी खतरे में नाक फिर से खबर आई है बीसी से, ब्रिटिश कोलंबिया से माजिद भाई, और वो कह रहे हैं जी कि लोग जो हैं इलिसिट ड्रग ओवरडोज जो है उससे काफी लोगों की डेथ्स हो रही हैं, वो कह रहे हैं एवरेज ऑफ 5.3 पीपल डाइड एवरी सिंगल डे इन जैन, और वो कह रहे हैं कि ये मुसीबत जो है ये बढ़ती जा रही है। कोरोनर सर्विसेज जो है वहां पे उन्होंने कहा कि 165 डेथ्स वर रिकॉर्डेड इन द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर एंड दिस शोज 104% इंक्रीज ओवर लास्ट ईयर। वो कहते हैं लास्ट ईयर जनवरी के महीने में सिर्फ 81 लड़के जो यानी बच्चे जो थे ड्रग ओवर या लोग जो थे ड्रग ओवर डोज से मरे थे, तो वो कह रहे हैं कि ये जो है चीज ये बहुत ज्यादा डीप होती जा रही है और ये बहुत क्राइसिस बढ़ता चला जा रहा है, तो अब वो वहां पे फिर अगेन वो मतलब है सही वही कमिंग बैक टू स्क्वायर वन वाली बात है कि फिर से जी अब प्रोब करेंगे ये ड्रग्स कहां से आ रही है, और भाई तुम कब से दुनिया चला रहे हो अभी तक तुम्हें पता ही नहीं चला ड्रग्स कहां से आ रही है, तो जनाब वो ड्रग्स अब कहां से आ रही है उसके लिए। फिर वो कहते हैं जी कि यहां पे बहुत सारे लोग जब ये इधर पुलिस ने प्रोब करनी शुरू की तो उनको पता चला कि बहुत हाई लेवल्स ऑफ फेंटलन जो थी वो उन्होंने ली हुई थी और उसकी वजह से ये ओवरडोजेस हो रहे थे, और ये
दोनों दोनों सीरीज को आप सिर्फ वैंकूवर को ना करें क्योंकि वैंकूवर व्हाटएवर हैपेंस इन वैंकूवर समथिंग लाइक दैट हैपेंस इन टोरंटो,
सो
टोरंटो एंड वैंकूवर बोथ आर अंडर द सेम फायर
जी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम। अच्छा जनाब एक और अदारा है जिसकी बिल्कुल समझ नहीं आ रही है एंड दैट इज सीआरए, हमारा जो है कनाडा रेवेन्यू एजेंसी, इनको बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रही है, ये बेचारे कुछ करने लगे हैं फिर ट्रूडो साहब एक नया ले आते हैं रूल फिर उसको जरा समझने लगते हैं फिर एक नया रूल आ जाता है, मुझे बिल्कुल लगता है कि सीआरए जो है ना अगर मैं हम जाके उसको जरा देखें ना टिपिकल पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी की तरह नहीं है बैठे तंबाकू रगड़ रहे होते हैं बिल्कुल वैसे हैं। अच्छा जी आज सीआरए ने एक और बड़ा कमाल का काम किया,
अच्छा।
पहले लोगों को थोड़ा थोड़ा पैसे दिए फिर कहा जी वापस करो, अच्छा जी अब इन्होंने क्या किया है, वो कहते हैं कि जो ये कोविड-19 रिलेटेड बेनिफिट्स थे 2020 उनको जो है इनकरेक्ट हमने टैक्स स्लिप्स भेज दी हैं यानी उनको जो हमने भेजी हैं स्लिप्स उसके अंदर लिखा हुआ है कि ये आपको ये टैक्स रिटर्न्स जो हैं उनके अंदर आपको ये पेएबल है और ये पैसे सारे मोड़ो सानू तो जनाब वो कह रहे हैं कि अच्छा फिर अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए उन्होंने कहा
वो कह रहे हैं जी
ये ऑनेस्ट मिस्टेक है, ये छोटी मोटी मिस्टेक्स हैं और बड़ी रेयर होती हैं मगर हो जाती हैं, तो अगर आपको इस तरह की कोई स्लिप्स आ गई है भाई बदनसीबो जिन्होंने सर्व लिया और उनको आ गया कि जी पैसे सारे मोड़ो, तो उनके लिए ये नंबर है हम आपको बता रहे हैं, नंबर है 1-800-959-8281 अच्छा जी, मैं नंबर फिर से बता देती हूँ, अगर आपके पास ऐसी गलत स्लिप आ गई है सीआरए की, आप इनको कॉल करें ऑन 1-800-959-8281 टू फिक्स दिस प्रॉब्लम। और आपको पता ही है कि अभी जो लोगों को जो फॉर्म्स वगैरह भी मिले थे उनके अंदर भी, हालांकि सर्व जो था वो तो उसमें तो आपको वो नहीं था, लेकिन फिर भी तो आप इनको कॉल करके इस नंबर पर अपनी ये जो मिस्टेक्स उन्होंने की हैं उनको आप करेक्शन कर सकते हैं। स्टैट्स कनाडा की आज एक खबर आई है जी कि जो कनेडियन इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा 5.4% जीडीपी उसका जो है श्रिंक कर गया है, और ये जो नीचे आई है चीज आफ्टर 1961,
बट दिस अंडरस्टैंडेबल है
कि पेंडेमिक का जमाना है, जाहिर है उन्होंने बोला है उसके अंदर, उन्होंने बोला है कि ये जो इकोनॉमी बहुत ज्यादा शट डाउन हो गई थी मार्च अप्रैल ऑनवर्ड से लेके, तो उसकी वजह से उसका इफेक्ट है ये, और इसीलिए जो है, लेकिन वो कहते हैं कि अब इतने भी बुरे हालात नहीं थे, जिस वक्त इकोनॉमी थोड़ी थोड़ी खुलनी शुरू हुई तो क्वार्टर फोर जो फोर्थ क्वार्टर जो था 2020 का, उसमें इकोनॉमी ने स्ट्रेंथ भी दिखाई है, 9.6% से ये इंक्रीज भी किया है, विच मीन्स कि जब लोगों के पास पैसे सर्प शर्प के आने शुरू हुए, जो कि अब सीआरए वापस मांग रहे हैं, तो लोगों ने स्पेंडिंग की तो वो सारा पैसा इकोनॉमी के अंदर गया, तो वो जो है उससे जो है इकोनॉमिक ग्रोथ भी देखी गई, लेकिन जाहिर है कि अभी इकोनॉमी जो है वो स्लो चलेगी। बड़े बड़े मुल्कों में माजिद भाई, इंडिया जैसा मुल्क जो है वो भी जो है, और बहुत सारे दुनिया के, अमरीका जो है, अमरीका, कैनेडा, इंग्लैंड,
जर्मनी,
हाँ पूरा यूरोप जो है उसमें काफी स्लो हो गई है इकोनॉमी, तो विच इज अंडरस्टैंडेबल। तो बहरहाल ये जो है स्टैट्स कनाडा की रिपोर्ट थी। अच्छा जनाब, आज जो एक प्रेस रिलीज हमारे पास आई है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैरोलिन मनरूनी के ऑफिस से, और इसके मुताबिक आपको पता ही, हम आपको बताते थे कि ये टर्फ वॉर चल रही थी टो ट्रक इंडस्ट्री के अंदर, तो उनकी आज एक प्रेस रिलीज अभी आई है, और उन्होंने कहा कि अब हम बहुत स्ट्रिक्ट जो है वो एक्शन लेने वाले हैं, और ये जो वायलेंस चली गई है कि एक दूसरे को गोलियां मारते हैं ये लोग जो है अपने वो एरिए अपने इलाके बनाने के लिए, तो ये वायलेंस जो है बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, और इसलिए अब जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसने, वैसे लास्ट ईयर ही जब ये लड़ाइयां शुरू हुई थी ना माजिद भाई, जून 2020 में वैसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो थी फोर्ट साहब की, उन्होंने एक टास्क फोर्स बनाई थी। अब वो कह रहे हैं जी, कैरोलिन मनरूनी साहबा कह रही हैं कि इस टास्क फोर्स को हम जरा ज्यादा फोर्सेस दे रहे हैं, पावर्स दे रहे हैं यानी के, और इनको ज्यादा जो है वो कर रहे हैं कि ताकि ये काम जो है कर सके और इस वायलेंस को जो है इसमें रोक सके, तो इसलिए इन्होंने आज जो है क्रैक डाउन बहुत सख्ती से शुरू कर दिया है। वो कहते हैं ये जो अब सारा हम ये जो लेकर आ रहे हैं ये कि हमारी टास्क फोर्स कैसे काम करेगी, हमने बहुत सारे 70 इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ मिलकर बात की, लोगों से बात की, और जो एक्सपर्ट्स थे उनके पास बात करने की थी, और फिर हमारे पास ये टास्क फोर्स की रिकमेंडेशंस आई थी, तो बेस्ड ऑन दोज रिकमेंडेशंस नाउ वी विल वर्क फॉर टो इंडस्ट्री में बेहतरी लाने के लिए। इटली के अंदर एक नई रिसर्च आई है माजिद भाई, और उस रिसर्च के मुताबिक जो है ये जो लोग कहते हैं ना मेरे जैसे कि अगर आप ज्यादा देर मास्क पहनेंगे तो सांस नहीं आती है, उन्होंने कहा जी ये ड्रामाबाजी अब नहीं चलेगी। एक नई रिसर्च इटली में आई है, उसके मुताबिक चिल्ड्रन एज यंग एज 4 मंथ्स उनको भी आप मास्क जो है पहना सकते हैं, अनलेस अनटिल उनको कुछ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं।
एग्जैक्ट
तो वो कहते हैं कि हमने ये पैटर्न पूरा स्टडी किया है फॉर 6 मंथ्स, ये छोटे टॉडलर्स जो बच्चे थे इनको हमने वो मास्क पहनाया और हम ये देखना चाहते थे कि उनको कोई तकलीफ हो रही है, कोई उनके पैटर्न में चेंज आ रही है या कुछ, वो हमने कोई ऐसी चीज एक्सपीरियंस नहीं की उस स्टडी के अंदर, तो बच्चे जो है वो अगर पहन सकते हैं तो एवरीबडी कैन। तो इनके जो सैंपल था वो 4 महीने से लेके बच्चे का 12 साल के बच्चे थे, तो उन्होंने कहा कि एवरीबडी कैन वेयर सर्जिकल मास्क। नाइजीरिया के अंदर खुशी की खबर यह है, लेकिन ये बड़ी थोड़ी सी डूबियस भी है ये खबर। नाइजीरिया में खबर यह है कि उनके जो जमाटा के जो गवर्नर हैं बेलो मटावेले, उन्होंने आज कहा है कि वो जो बच्चियां, हमने आपको बताया था कि गवर्नमेंट गर्ल्स जूनियर सेकेंडरी बोर्डिंग स्कूल इन जंजबे जो है उसके अंदर से वो लेकर चले गए थे, उन्होंने अबडक्ट कर ली थी कुछ 317 बच्चियां जो थी, जबकि वो उनकी एज 10 साल और उससे ऊपर ही है थोड़ी सी। तो आज जो गवर्नर साहब हैं जमफारा के, उन्होंने कहा है कि हमने 279 बच्चियां बचा ली हैं। अच्छा, अब जो वहां पे रिपोर्टर्स बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि जो पहली जो आपके गवर्नमेंट की फिगर आई थी वो तो 317 की थी, कि 317 बच्चियां किडनैप हुई हैं, आज आप कह रहे हैं कि वी हैव रेस्क्यूड ऑल ऑफ देम विच इज 279, तो क्या आपने ये फिगर पहले गलत दी थी या अब आप गलत दे रहे हैं? तो बकिया की बच्चियां कहां हैं? या तो उसका जवाब गवर्नर साहब के पास नहीं था, तो उन्होंने कहा कि जी मैं पूछ के आपको बताऊंगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमने सारी बच्चियों को फ्री करवा लिया है।
ठीक,
तो अब देखने में ये आएगा कि ये इसमें जो है सच्चाई क्या है। तो अब उन बच्चियों के जो है मेडिकल चेकअप्स हो रहे हैं कि कहीं उनको रेप वगैरह तो नहीं किया गया, और फिर उसके बाद उनको पेरेंट्स के हवाले किया जाएगा। अच्छा जी, जो हम सोच ही रहे थे बहुत दिनों से ऐसे होने ही वाला है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत सारे रशियन ऑफिशियल्स जो हैं और कंपनीज कुछ जो हैं जो कि ये केमिकल इंडस्ट्री के अंदर है अमेरिका में, उनके ऊपर जो है सैंक्शंस लगा दी हैं और उन्होंने कहा है कि ये सैंक्शंस हमने इसलिए लगाई हैं कि तुम एक्सक्यूज मी कंपनीज जो है इन्वॉल्व हो डेवलपिंग ये जो नर्व गैस है जो कि आपने एलेक्जी नेवल्नी को दी है उसके अंदर और फिर आपकी गवर्नमेंट ने उसको सिर्फ वो गवर्नमेंट के क्योंकि अगेंस्ट बोल रहा है तो उसको आपने जेल में भी डाल दिया है तो उसके लिए अच्छा अब जब उनसे पूछा गया वहां पे जो है इनसे एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं कि आपने वो कौन सी कंपनियां हैं जिनके ऊपर आपने वो लगाया है और कितने लोग उसके अंदर शामिल हैं तो उन्होंने कोई एग्जैक्ट ना नंबर बताया कि कौन सी कंपनी है ना लोग बताए हैं कि किन ऑफिशियल्स किन रशियन ऑफिशियल्स के ऊपर बनाया बस उन्होंने सिर्फ यही कहा कि ये जो नोविचॉक जो है ये एजेंट दिस इज स्पेसिफिक टू रशिया तो ये रशिया ही बनाता है और ये ही उसको दिया गया था जब जर्मनी में वो अंडर ट्रीटमेंट था तो हमें पता चला था तो एलेक्जी नेवल्नी जो है उसको आप जेल से निकालें और ये जो है तो अब जाहिर है कि वो तो रशिया तो अब जेल से उसको निकालेगा नहीं तो बल्कि और शायद उस बेचारे पे सख्ती करे तो लेकिन भारत इन्होंने जी सैंक्शंस आज अनाउंस की हैं बड़े बड़े देखो मजे शहरों में क्या कुछ होता है और ये लोग जो कि ह्यूमन राइट्स के बड़े प्रचार करते फिरते हैं और जी चाइना के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं और पाकिस्तान में फलाना नहीं ठीक हो रहा और FATF में रखा हुआ है गवर्नर जो है एंड्रियो कोमो आज कोई 6 या 7 औरतें एज उनकी क्या है 63 ईयर्स कोई आ गई हैं औरतें सामने और उन्होंने कहा जी कि जब जब कोई हम इनके इन टच होते थे किसी पार्टी में ये मिलते थे या कोई इनके पास इंटर्न आता था या कुछ तो उसके साथ ये सेक्सुअल हरासमेंट करते थे उसको कोई बच्ची को किस करने की कोशिश करते थे कोई ग्रोपिंग कोई कुछ इस तरह उस तरह अच्छा जी कोमो साहब कह रहे हैं कि मैंने तो ऐसा कभी कुछ नहीं किया वो लड़कियां जो डिनाई कर दिया लेकिन अब अगर ये इतना बड़ा झूठ है तो कुछ इससे जो मिली जुली स्टोरियां हैं उन बच्चियों की वो न्यूयॉर्क टाइम्स ने कवर की हैं माजिद भाई और आपको पता है कि ये बड़े अखबार वॉशिंगटन पोस्ट न्यूयॉर्क टाइम्स दे विल नॉट यू नो पब्लिश अ लाय कोई तो वो प्रूफ जो है वो लेते ही हैं इन लोगों से प्रूफ के बगैर तो ये अब स्टोरियां जो हैं खासतौर पर वो जो है एना रूश जो है लड़की उसकी न्यूयॉर्क टाइम्स में आ गई और भी कुछ बच्चियां जो है सामने आ रही हैं जिनके के अंदर ये एक तो जो बच्ची है वो है न्यू लिन न्यू और अब तो खैर वो बच्ची नहीं रही अब तो 37 इयर्स की है तो वो कहती है कि मैं नई नई आई थी वहां पे मैनहैटन के एरिया में एंड देखें मजीद भाई कैसे वो उस वक्त 20s में थी नाउ शी रिप्रेजेंट्स लोअर मैनहैटन तो शी इज अ लॉ मेकर नाउ हरसेल्फ तो उसने एक तो शिकायत की है फिर एक और जो एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉय थी लिंडसी बॉयलन उसने की है फिर एक लड़की है शार्लेट बेनेट जो
मगर
है,
वो जो उसने लॉ मेकर है उसका ताल्लुक किस पार्टी से है है ना हम मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूं मैं एक सवाल दे रहा हूं कि दिमाग में कि भाई दिस हैपन सो मेनी इयर्स अगो
उस वक्त क्यों नहीं बोली
और उसके बाद फिर आप जो है नाउ यू आर लॉ मेकर आई मीन यू मस्ट बी बिलोंगिंग टू सम पार्टी अगर आप कंजर्वेटिव टाइप है तो इट मीन्स के देन दे इज कोई रीजन है कि जिसकी वजह से आप ये कर रहे हैं
उसके खिलाफ बोल रही हैं लेकिन देयर आर अदर गर्ल्स आल्सो
ना नहीं वही मैं कह रहा हूं ना कि देयर आर सो मेनी अदर गर्ल्स हु आर कमिंग आउट एंड सेइंग इट मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कौन गलत है कौन सही है कौन क्या है मगर मैं सिर्फ उस वन पर्सन की बात कर रहा हूं जो फर्स्ट आई थी पहले सबसे पहले वही आई थी
जी जी जी
है ना
न्यू
हाँ तो वो सबसे पहले वही आई थी और उन्होंने आगे कहा तो अब वो इंकरेज करने वाली बात ना कि मैं मेरे खिलाफ इसने बात की और फिर उन्होंने कहा कि यार चलो जब इसके खिलाफ बात हुई है तो या मेरे साथ भी उन्होंने ऐसा किया था मेरे साथ भी ऐसा किया था मेरे साथ तो 3-4 लोग और उनको शय मिलती है वो बाहर आते हैं कहते हैं
हाँ पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी हो सकता है यस यू आर राइट हाँ जी पर उन्होंने बिल्कुल डिनाई किया उन्होंने कैसी कि मैंने कोई हरकत कभी भी नहीं की
सही
ऐसे अच्छा जी नहीं और मैं इस खबर को कवर इसलिए ना करती माजिद भाई मैं आई वॉज रीडिंग न्यूयॉर्क टाइम्स राइट तो न्यूयॉर्क टाइम्स में चूंकि बड़े वो दर्दनाक किस्से वो जो छपे हुए थे तो मैंने कहा कि अगर न्यूयॉर्क टाइम्स छाप रहा है तो शायद कोई सच्चाई होगी इसके अंदर तो बहरहाल अब देखने की बात यही है कि अब क्या होता है अच्छा जी आज एक बड़ी रेयर अपीयरेंस दी है FBI के डायरेक्टर क्रिस रे ने और क्योंकि FBI के डायरेक्टर्स ऐसे पब्लिक में सामने आके करते हैं लोगों को पता ही नहीं होता कि ये लोग कौन है तो बहरहाल वो सामने आए हैं और उन्होंने बड़ा कंडेम किया है वो जो कैपिटल हिल के ऊपर जो जनवरी में जो वो राइट्स हुए थे सारे लेकिन उन्होंने FBI को डिफेंड किया है आज उन्होंने कहा है जी कि FBI को बहुत ही रॉ किस्म की इंफॉर्मेशन मिली थी और हमें पता नहीं था कि ये ऐसा लोकल टेररिज्म जो है वो शो हो सकता है उस वक्त जिस वक्त लॉ मेकर्स अंदर बैठे हुए ये डिसाइड कर रहे थे कि कौन जीता है, ट्रंप साहब या कि बाइडन साहब। तो हमने तो सबको बता दिया था। अच्छा, अब इनकी स्टेटमेंट इज एग्जैक्टली कॉन्ट्रवरी टू व्हाट कैपिटल हिल पुलिस सेज। उन्होंने कहा जी हमें तो FBI ने कोई इतला ही नहीं दी थी। अगर हमें इतला दी होती तो एटलीस्ट हमने वहां पे कुछ ऑफिशियल्स जो हैं अपने उधर छोड़े होते वहां पे।
अमेरिका में अगर आप देखें ना तो अब जो पिछले इलेक्शन के बाद से लेकिन इतना केओस है वहां पर और पार्टीबाजी इतनी ज्यादा हो गई है,
बढ़ गई है,
राइट विंग एंड लेफ्ट विंग इतनी तेजी से बढ़ गया है और द डिफरेंस बिटवीन देम इज अ माइल्स अपार्ट। चाहे कोई सा भी आप ले लें, किसी बात को भी ले लें आप, तो उसके अंदर वही
कंसेंट नहीं आता।
देयर इज नो कंसेंट, देयर इज आइदर यू आर राइट विंग और यू आर लेफ्ट विंग। सो इट इज गोइंग टू बी वेरी हार्ड फॉर अमेरिका फॉर नेक्स्ट फ्यू इयर्स टू कम इज गोइंग टू बी वेरी हार्ड। एंड ऑफ कोर्स नेक्स्ट कैंडिडेट जो है 2024 में वो जनाब ट्रंप साहब भी होंगे। उन्होंने तो कह दिया कि हम तो वी आर कमिंग।
तो उन्होंने कहा जी हमने तो बता दिया था, उन्होंने किया नहीं है, लेकिन अब उसमें क्वेश्चंस तो जो है कांग्रेस में उठ रहे हैं क्योंकि 5 लोगों की डेथ हो गई थी जिसमें कि एक कैपिटल हिल का ऑफिसर भी था और एक औरत थी जिसको गोली मारी गई थी जो कि वो चेंबर के अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी जहां पर ये सारे लॉ मेकर्स बैठे थे। तो अब वहां पर तो माजिद भाई ऐसे छोड़ते नहीं है ना, अगर आपने लोग मर गए, गोलियां चला दी, तो वो तो इंक्वायरी बैठ जाती है। तो लेकिन बहरहाल इन्होंने कहा जी हमने तो अपना काम किया था और हमने बताया था, आगे से आपका काम था, उसको संभालना आपने नहीं किया तो आपकी मर्जी है। वो कहते हैं जी हमें तुमने कुछ भी नहीं बताया, हमें कुछ भी पता नहीं है। अच्छा जी, बस बात वही है कि वो आज भी वैसे ही दुनिया चलती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, माजद भाई, आज भी दुनिया वैसे ही चलती है जनाब। अगर आपको लग रहा है ये बड़े डेमोक्रेटिक सिस्टम्स आ गए हैं और दुनिया बड़ी वो सही हो गई है, नहीं, जहां पे जिसका इंटरेस्ट है ना वहां पे वो कभी जो है वो सच्ची बात नहीं करेगा। अच्छा जी, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन को कल क्या कहा था जो है वो जमाल खशोगजी की जो फैन से थी, उन्होंने कहा कि मोहम्मद बिन सलमान जो क्राउन प्रिंस इन सऊदी अरेबिया के, उनको आप पनिश करें बिकॉज आपकी खुद की जो एजेंसीज हैं उन्होंने कहा है कि ही इज इन्वॉल्व समहाउ। आज जनाब जो वहां पे जो हैं स्टेट डिपार्टमेंट की स्पोक्स पर्सन नेड प्राइस जो हैं, उन्होंने कहा है जी कि हम कोई भी एक्शन मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ नहीं ले रहे हैं और उसका रीजन उन्होंने दिया है, उन्होंने कहा है कि वी आर वर्किंग टू बिल्ड दिस रिलेशनशिप ऑन राइट फुटिंग, और अगर हमने कुछ ड्रामेटिक या ड्रास्टिक करने की कोशिश की तो फिर US और KSA के जो रिलेशनशिप्स हैं वो बिल्कुल डिमिनिश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, चलेंगे नहीं आगे। आपको पता ही है मोहम्मद बिन सलमान साहब क्राउन प्रिंस तो हैं ही हैं लेकिन असल में सऊदी गवर्नमेंट वही चलाते हैं, किंग सलमान तो बहुत बूढ़े हो गए हैं, चलती इन्हीं की है, तो डिफेक्टो रूलर वैसे।
मतलब इसमें कोई हमें सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। दिस इज वेरी अंडरस्टूड,
इस तरह की स्टेटमेंट ट्रंप साहब ने भी दी थी कि हमारी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड, वो जो आर्म्स की डील्स हैं सऊदी अरेबिया के साथ, तो हम उनके खिलाफ कैसे जाएंगे भाई।
एग्जैक्टली,
ठीक है जी। तो नहीं, आज तो उन्होंने बड़ी वो मजे की बात की, उन्होंने कहा कि अगर हमने इस लड़के के खिलाफ कोई एक्शन लिया तो हमारे तो रिलेशन ही डिमिनिश हो जाएंगे सारे, तो हम तो ये चाहते नहीं है। तो जनाब इसलिए, ठीक है जी, तो अब कुछ बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन भी कोई एक्शन नहीं लेगी। अच्छा, आज एक बहुत ही अजीब वाकया हुआ जी, कैलिफोर्निया के एरिया में एक SUV जो थी उसकी आज एक टक्कर हुई एक सेमी ट्रक के साथ और अभी तक उसका कॉज नहीं पता चला कि क्या है। तो वहां पे जो हॉस्पिटल था एल सांत्रो रीजनल मेडिकल सेंटर, उसने कहा है कि हमें लगता है कि उस SUV के अंदर कोई 27 के करीब लोग थे क्योंकि 15 लोग जो हैं वो तो उनकी डेथ हो गई। अच्छा, क्या हुआ कि 14 लोगों की तो ऑन द सीन डेथ हो गई और वो जो ट्रैक्टर ट्रॉलर था ना माजिद भाई उसके अंदर ग्रेवल था तो शायद वो गिरा होगा इनके ऊपर। तो वो कहते हैं जी 14 लोगों की तो उधर ही डेथ हो गई, एक आदमी आते आते हॉस्पिटल में उसकी 15 लोगों की डेथ हो गई और बाकी लोग काफी सीरियस हैं, कुछ उसमें से ICU में है। तो अब ये पुलिस फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही है कि इस SUV को क्या मुसीबत पड़ी थी कि इसने जाके टक्कर जो है उस ट्रैक्टर में मारी। انڈر دا انفلوئنس تھا وہ ڈرائیور یا کیا تھا. بہرحال اٹ از ویری سیڈ جو ہے وہ انسیڈنٹ ہے. میانمار کے اندر جناب چیزیں خراب سے خراب ہوتی جا رہی ہیں, اور آج جو پولیس ہے انہوں نے وہاں پہ ٹیئر گیس اور جو ربر بلٹس ہیں وہ پروٹیسٹرز کو ماری ہیں. پروٹیسٹرز جو ہیں وہ ری گروپ کر کے واپس آئے ہیں. انہوں نے جو ہے وہ اتھارٹیز کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ یہ ملٹری کو کہیے آپ گورنمنٹ چھوڑیں, ہماری ڈیموکریٹک گورنمنٹ جو ہے وہ لے کر آئیں. اس بیچ میں جو یونائٹیڈ نیشنز ہے اس کا کہنا ہے کہ سنڈے تک جو ہمارے پاس رپورٹس آئی تھیں اس کے مطابق 18 لوگوں کی ڈیتھس ہو چکی ہیں ان پروٹیسٹ میں. اور جو آج آسیان کی جو بیٹھی ہوئی تھی جو فارن منسٹرز کی جو ایک میٹنگ بیٹھی ہوئی تھی ظاہر ہے کہ ورچولی, تو انہوں نے بھی بہت زیادہ ان کو کنڈیم کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ بھئی آپ یہ وائلنس روکیں اپنے ملک میں, یہ کیا ہو رہا ہے کیونکہ اس کے اندر لوگ مر رہے ہیں, کیونکہ سیکیورٹی فورسز جو ہیں کانسٹنٹلی وہ بیریکیڈز لے کے کھڑے ہوئے ہیں, وہ ان کے اوپر ٹیئر گیس اور بلٹس مارتے ہیں, وہ لوگ زخمی ہوتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے پیچھے ہٹ جاتے ہیں پھر ری گروپ کر کے واپس آتے ہیں. تو پروٹیسٹ یعنی کہ مطلب یہ ہے کہنے کا کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں نہ وہ
واپس.
جی ایسے ہی لگتا ہے. اچھا جناب رائٹرز کی آج ایک رپورٹ ہے, اور رائٹرز کی اس رپورٹ کے مطابق جو ہے ایک چائنیز سٹیٹ بیکڈ ہیکنگ گروپ ہے, اور اس کو ایک اور دوسری فرم ہے سائے فرما, وہ بھی ایک اسی طرح کی ایک انٹیلیجنٹ ہیکنگ وہ ہے, لیکن وہ ہیکنگ مطلب ہے برے طریقے سے نہیں کرتی. انہوں نے کہا ہے جی کہ جو چائنا بیکڈ ایک ہیکنگ کمپنی ہے وہ بہت ساری آئی ٹی فرمز جو ہیں دنیا کی, خاص طور پہ جو انڈیا کی یہ جو ویکسین جو مینوفیکچررز ہیں ان کا ڈیٹا ہیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا جی اس کے اوپر ظاہر ہے کہ چائنا نے بہت زیادہ, اور خاص طور پہ انہوں نے دو کمپنیز کا نام لیا, وہی سیرم انسٹیٹیوٹ اور دوسرا بھارت بایو ٹیک. تو انہوں نے جو ہے چائنا نے بڑا اس کے اوپر, چائنیز فارن منسٹری جو اس نے بڑا ریئیکشن جو کیا اس کے اوپر, انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے, مطلب ہے کوئی بھی دنیا کی کمپنی آ کے بول دے گی کہ چائنا نے یہ کیا تو آپ اس کو چھاپ دیں گے بس. آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو اس لیے یہ جو آپ بیس لیس اور ڈسٹارٹڈ اسپیکولیشنز اور ایلیگیشنز چائنا پہ لگاتے رہتے ہیں یہ کسی کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. اور ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ہم تو بڑا کنڈیم کرتے ہیں اس طرح کی ہیکنگ کو, اور ہم تو خود روکنے کی ان ہیکنگز کو کوشش کرتے ہیں. تو آپ ہمارے پہ کیسے یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ہم انڈیا کی جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں ان کا ویکسین کا ڈیٹا ہم چوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ ضرورت ہے بھی نہیں, ہماری تو خود کی چار ویکسینز ہیں, تو آپ کا ڈیٹا ہم چوری کر کے کیا کریں گے. اور یہ آج کی رپورٹ تھی کہ دنیا میں جہاں جہاں پہ چائنیز ویکسینز, کیونکہ چائنا بھی مفت دے رہا ہے ساروں کو ویکسینز, جہاں جہاں جا رہی ہیں وہاں پہ لوگوں کو کوئی ریئیکشنز نہیں آ رہے دوائی کے. تو اس لیے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل اس کے اندر جو ہے یہ بہت ہی ارسپانسبل بیہیویئر ہے, اور چائنا اس کو جو ہے
اسی ٹاپک پہ جو ویکسینز کی ٹاپک بات کر رہی ہیں آپ چائنا کے ساتھ ساتھ, تو چائنا نے جو ہے آج چلی میں وہاں پر بھیجی اپنی ویکسین, اور اس کے ساتھ ساتھ سربیا اینڈ ہنگری اینڈ 12 ادر کنٹریز میں انہوں نے غریب کنٹریز فری ڈسٹریبیوشن کر رہے ہیں. تو اس کے خلاف بھی انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی ہے کہ بھئی یہ جو ہے یہ پولیٹیکل موٹیویٹڈ ہے, یہ کہ وہ اپنا انفلوئنس وہاں دینا چاہ رہا ہے, تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ وہاں پر فری دے رہا ہے. حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو اب یو ایس لوگ تو بائیڈن صاحب کا بڑا, کینیڈینز تو بڑا تعریف کرتے تھے کہ بھائی 80% لوگ ان کو چاہ رہے تھے کہ وہ آ جائیں, اور جب ٹرمپ صاحب نہ آئے وہاں پر تو اب ہوا یہ کہ آج جو ان کی جو پریس سیکرٹری ہیں جن
ساکی,
ہاں تو وہ انہوں نے جو ہے انہوں نے صاف کہہ دیا کہ جو ویکسینز جو ہیں وہ جو امریکہ میں تیار ہو رہی ہیں وہ ہم کینیڈا اور میکسیکو کو نہیں دیں گے جب تک کہ پورے کے پورے امریکنز کو ویکسینیٹ نہ کر دیا جائے.
ہاں جی, تو اسی لیے یہ کوشچن بھی بلکہ پوچھا گیا تھا ٹروڈو صاحب سے کہ آپ نے جو مطلب ہے ستویں محلے انڈیا کو جا کے کہا ہے کہ جی ہم کو جو ہے آپ ویکسینز بھیجیں, تو یہ جب بائیڈن صاحب نے تو پہلا فون کال ہی آپ کو کیا تھا تو آپ نے کیوں نہیں ان سے ویکسین کا وہ قصہ کیا. تو اب جو پیچھے کی سٹوری ہے وہ یہی بتاتی ہے کہ چونکہ ٹروڈو صاحب کو آلریڈی یہ بتا دیا گیا تھا کہ امریکہ آپ کو ویکسین نہیں دے گا, اسی لیے جب دونوں لیڈرز نے بات کی
تو اس ٹاپک کو چھیڑا ہی گیا,
اس ٹاپک کو چھیڑا ہی نہیں انہوں نے,
کیونکہ آج اب جب وہ میکسیکو کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ چاہ رہے تھے ان سے, وہ چاہ رہے تھے کہ میں آج جب ملاقات ہوگی میری جناب بائیڈن صاحب سے تو میں ان سے کہوں گا, ریکویسٹ کروں گا, تو اس سے پہلے ہی جن ساکھی جو ہیں जो उन्होंने पहले से उन्होंने कह दिया कि भाई ये जो है हम
दिस इज ऑफ द टेबल
ऑफ द टेबल
एब्सोल्यूटली दिस डिस्कशन इज ऑफ द टेबल यस
एग्जैक्टली
दैट्स राइट बिल्कुल ठीक है सही है अच्छा जी ठीक है अच्छा जनाब ये रॉयटर्स की आज एक खबर है और रॉयटर्स की खबर के मुताबिक जो ब्राजील के अंदर जो जो वेरियंट नजर आया है कोविड 19 का नाउ दिस वन इज वेरी वेरी डेडली एंड इट हैज ऑलरेडी गॉन इन 20 कंट्रीज इसका नाम है P.1 जैसे कि वो दूसरे आए थे ना साउथ अफ्रीका से B.1.7 यानी 117 B.1.1 तो ये कह रहे हैं ये P.1 जो है ये बहुत ट्रांसमिटेबल भी है और ये इसको रोकना भी मुश्किल है और शायद ये जो दवाइयां जो सामने आ रही हैं ये इसके ऊपर असर भी कम करेंगी ये जो वैक्सीन आई हैं ये इसके ऊपर असर भी कम करेंगी और ये जो है हो सकता है कि डोमिनेट वही बात एग्जैक्टली जो थेरेसा टैम ने की है कि वो कह रहे हैं कि ये नेक्स्ट टू मंथ्स में कनाडा के अंदर डोमिनेंट जो स्ट्रेन होएगा वो वेरिएंट स्ट्रेन होएगा यही बात एग्जैक्टली आज जो है रॉयटर्स की ये जो खबर है ये बता रही है और साइंटिस्ट जो हैं काफी इसके ऊपर जो हैं वो परेशान हैं अल जजीरा में एक खबर आई थी जी आज और ये मुझे और कहीं किसी जगह पर नहीं नजर आई सिर्फ अल जजीरा में ही नजर आई स्विट्जरलैंड जो है आपको पता ही है कि उसने कुछ अर्सा पहले जस्ट लाइक फ्रांस उन्होंने कहा था कि औरतें जो मुसलमान औरतें हैं वो बुरका नहीं पहन सकती क्योंकि अकॉर्डिंग टू देयर लॉ वो कहते हैं जी कि फेस को ना छुपाएं आप फेस को ना छुपाएं
सही
आप अपना जो अगर हिजाब आपको पहनना है तो आप वो जरूर पहने लेकिन बुर्का ना पहने आप और खासतौर पे उनकी जो राइट विंग स्विस पीपल्स पार्टी जो है उसने एक पूरी रेजिस्टेंस जो थी ये उधर ऑर्गेनाइज की थी और वो कह रहे थे कि ये तुम क्या ये मुसलमानों को खुश करने के लिए तुम इधर इस्लाम लाने की कोशिश कर रहे हो स्विट्जरलैंड में तो इसका वोटिंग जो है जी इसकी कि क्या मुसलमान औरतें बुर्का पहन सकती हैं कि नहीं पहन सकती हैं इसकी वोटिंग मार्च 7 को होगी तो अब ये देखना है कि ये बिल जो है वो पास होएगा कि नहीं अच्छा उनसे पूछा किसी ने ये पीपल्स पार्टी वाले जो हैं स्विट्जरलैंड के उनसे उन्होंने पूछा उन्होंने कहा कि भाई आप क्यों इस चीज के इतने खिलाफ हैं वो कहते हैं हमें लगता है कि ये ओप्रेशन अगेंस्ट विमेन है ये औरतों के खिलाफ जो है ना ये एक साजिश है क्यों यानी अगर मर्द अपनी शक्ल दिखा रहा है तो औरत क्यों ना शक्ल दिखाए
अब वो देखें वो जब उन्होंने शुरू किया था ये बात तो ये देवर टोटली अगेंस्ट नकाब
फ्रांस ने शुरू किया
नकाब नकाब के खिलाफ थे बस वो कि भाई आप नकाब ना पहने है ना बाकी की सब चीज करें आप
नकाब ना पहने बैठे
है ना अब जो है अल्लाह का करम देख लें कि आदमी हो औरत हो बूढ़ा हो बच्चा हो छोटे छोटे इन्फेंट्स
4 महीने का बच्चा हो
उन्होंने कहा जी सब नकाब पहनो तो अब सारे के सारे नकाब पहन रहे
तो बस वही है वो अब वोट होने वाला है 7 मार्च को तो अब देखें ये क्या होता है जी अब ये अब आपकी अपनी वो है वो कहते हैं कि ये नॉर्मल क्लोथिंग नहीं है दिस शोज ओप्रेशन अगेंस्ट वुमेन तो हम नहीं अपने मुल्क में जाते
ठीक है जी
ठीक है जी ना महेश भाई आप तो स्विट्जरलैंड के नहीं है ना
नहीं ठीक हो गया
अच्छा ठीक है फिर ठीक है मामला फिर ठीक है अच्छा जी अच्छा जनाब आज एक बड़ी जबरदस्त हुरॉन ग्लोबल रिच लिस्ट जो है 2021 जो है आज छापी गई है और इस लिस्ट के मुताबिक लास्ट ईयर जब लोग पेंडेमिक से गर्क हो रहे थे तो इंडिया के अंदर 40 बिलियनर्स जो हैं वो ऐड हुए थे उनकी रिच लिस्ट के अंदर ठीक है जी अच्छा जनाब वो कहते हैं कि इस वक्त इंडिया के अंदर 177 बिलियनर्स हैं इसमें जो 32 जो हैं वो इंडियन ओरिजिन के बिलियनर्स हैं दुनिया के अंदर और इंडिया के अंदर 37 बिलियनर्स हेल्थ केयर में आए हैं 26 बिलियनर्स कंज्यूमर गुड्स में हैं और 19 बिलियनर्स जो हैं वो केमिकल इंडस्ट्री में हैं और मुंबई में 61 हैं दिल्ली में 40 हैं और इन बिलियनर्स की एवरेज एज जो है बिटवीन द ब्रैकेट ऑफ 66 है और इसमें मुकेश अंबानी साहब जो हैं
वो
अभी भी जो हैं इंडिया के रिचेस्ट और दुनिया के 8th रिचेस्ट आदमी हैं
क्या बात है
अच्छा जी मुकेश अंबानी साहब जो हैं उसकी वो उनकी जो वेल्थ है जनाब इट ग्रू लास्ट ईयर टू 83 बिलियन $83 यानी कि 24% और ग्रो की है और इसके अलावा जो दूसरे रिचेस्ट आदमी इंडिया के अंदर हैं वो जो हैं अदानी साहब हैं और उनकी ऑलमोस्ट जो वेल्थ है वो डबल हो गई एंड इट रीच $32 billion, क्योंकि उन्होंने वो जो एक अदानी ग्रीन एनर्जी सिस्टम शुरू किया था, तो उसकी वजह से जनाब ये ऐसे हो गया है। और जो है ऑफकोर्स इसके अंदर जो है वो मतलब ये कंसिडर करते हैं ना पीपल लाइक एसल और मिटल वगैरह, वो जो लंडन के जो हैं। तो बहरहाल जी इंडिया के अपने अंदर 177 है, लेकिन बात वही है जनाब की जो स्पेशली जो केमिकल इंडस्ट्री वगैरह में जो लोग हो गए ना, आपको याद है विक्टर ह्यूगो कि बहुत बड़े राइटर इंटेलेक्चुअल थे, उनका कहना था, वो कहते हैं कि उनका उनसे एक दफा लोग पूछ रहे थे कि व्हाट इज रियल पावर, तो वो कहते थे रियल पावर इज मेकिंग डिसीजंस, राइट डिसीजंस एट द राइट टाइम।
यू गॉट इट।
तो उससे आपको जो है पावर मिलती है। तो ये जो लोग जो इतने अमीर हैं, हमारे पाकिस्तानी बैठे सर खुजाते रहते हैं वो यार इतना पैसा कैसे आया, इन्होंने राइट डिसीजंस एट द राइट टाइम इस तरह लिए, जैसे कि ये आधार पुणे वाला सीरम इंस्टीट्यूट के जो है, इनके इनके वालिद साहब का भी नाम है इसके अंदर, ये जो रिच लिस्ट है ह्यूरॉन की उसके अंदर, बिकॉज इनको पता चला कि मार्केट को कैपिटलाइज आपने किस वक्त और किस चीज पे करना है।
प्लस मैं आपको एक बात बताऊं, दुनिया में वही शख्स जो है ये इस स्टेज पे पहुंचते हैं जो ये बिलियनियर्स की लिस्ट बता रही है ना आप, दे टेक रिस्क, दे टेक अ लॉट ऑफ रिस्क कि आदर मैं बन जाऊंगा या ये मैं के पापड़ हो जाऊंगा, बट दे डू, बट दोज रिस्क आर नॉट लाइक मैंने उठाया और मिलियन डॉलर कहीं लुटा दिए, नहीं ऐसा नहीं,
दोज आर कैलकुलेटेड रिस्क होते हैं,
दोज आर कैलकुलेटेड रिस्क,
पूरी टीम्स होती हैं,
दे डू टेक कैलकुलेटेड रिस्क एंड देन दे बिकम
बिलियनेयर्स। हाँ जी, बकायदा की पूरी टीम्स होती हैं उनकी, एडवाइजर्स की, और उनके साथ ये बैठते हैं पूछते हैं कि हमको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है क्या करना है एंड दैट्स ऑल। तो जनाब ये आज लिस्ट आई है, वही हम कहते हैं अमीर कोई होए तो इनकी तरह होए, वरना ना होए
मुझे
थोड़े मजाक मचाया है तुझे एक अमीर ही है मिलियन डॉलर का बस कार ले लिया तो बस जी बड़ा तीर मारे है। ये देखो इतने लोग जड़े ने बिलियन ऑफ डॉलर की बातें कर रहे हैं भाई, 80 बिलियन डॉलर, ओ माय गॉड ये मुझे मैं सोचती हूँ ये गिनते कैसे होंगे मज भाई, ये जीरो कैसे गिनते होंगे कि ओ यार और जीरो एक आ गया, एक और जीरो आ गया,
हाँ।
एक और, हालांकि स्कूल में कहते हैं अंडा नहीं लेना तो, लेकिन जब इनके अंडे जमा हो रहे होते हैं,
मगर इनके अंडे जो है ना सही जगह पे जा रहे होते हैं ना हमारे अंडे पहले होते हैं, इनके अंडे बाद में होते हैं, तो छह के बाद छह का तो मिलियन हो गया, छह के बाद फिर ऐड करते रहे हैं,
अंडे ऐड करते हैं।
हाँ जी,
हमारे पास जो अंडे हैं बस वही हैं जो मुर्गियां देती हैं,
छह जीरो या छह अंडे जो है दैट इज अ मिलियन डॉलर।
हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल,
उसके बाद से जो है फिर आप जीरो ऐड करते रहे,
हाँ जी हाँ जी, बस जी बस,
देर ओनली नो हाउ मेनी जीरो,
कितने अंडे आ गए हमारे पास।
हाँ जी,
हमें अंडे देने वाली सिर्फ मुर्गियां बस, और और वो मुर्गियां भी ऐसी बदबख्त हैं कि उनको कभी मारो पीटो जो मर्जी को, दिन में कहो कि जी दो अंडे ही दे दो चलो नहीं, दिन में उन्हें एक ही बार अंडा देना होता है,
नहीं
देना। अच्छा जनाब, आज पीटीआई की एक आज रिपोर्ट है, एंड पीटीआई डजंट मीन पाकिस्तान तरीके इंसाफ, पीटीआई मीन्स प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की आज एक रिपोर्ट है, और ये एक उन्होंने इंटरव्यू छापा है डॉक्टर मनमोहन सिंह का, जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर थे उसके इंडिया के और बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। yes. कुछ लोगों का ख्याल है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, हालांकि इनकी तारीफ जो है ओबामा साहब ने की है, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि ही इज जस्ट ओवर रेटेड, इनसे बहुत बड़े बड़े ब्रेन्स हैं इंडिया के अंदर
होंगे,
लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह को बहुत ज्यादा भाव दिया जाता है,
होंगे मगर सामने नहीं आया, सामने लोग जो आए हैं उनमें से आई बिलीव जनाब मनमोहन सिंह साहब वॉज अ वेरी, ही स्टिल इज अ वेरी ग्रेट इकोनॉमिस्ट।
हाँ हाँ, तो मतलब तारीफें दुनिया सारी इनकी करती रही है।
yes.
अच्छा, आज राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट साइंसेज जो है वो जो एक इकोनॉमिक थिंक टैंक है इंडिया के अंदर जो है इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाता है बहुत बड़ी, वहां पे इनका एक लेक्चर था जो कि पीटीआई ने यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने छापा है, उनके मुताबिक डॉक्टर मनमोहन सिंह के मुताबिक जो इंडिया की इकोनॉमी का इतना बेड़ा गर्क इस वक्त हुआ है वो कहते हैं इट इज बिकॉज ऑफ बीजेपी पॉलिसीज, स्पेशली जो उनकी इल कंसिडर्ड डीमोनिटाइजेशन की पॉलिसी थी जो वो 2016 में लेके आए थे, और वो कहने लगे कि मैं बहुत खिलाफ था इस पॉलिसी के, और मैंने बहुत अपनी कंसल्टेशंस में गवर्नमेंट को कहा कि ये पॉलिसी आप ना लेकर आए, लेकिन उन्होंने सुना नहीं। अच्छा, उसके बाद वो कह रहे हैं कि ये जो आप सारा वक्त ये जो कागज छापते जा रहे हैं ये पैसा नहीं है, ये सिर्फ कागज है, इससे आपका जो पैसा है बहुत डी वैल्यू होएगा, और हालत आने वाले दिनों में स्टेट्स की इतनी बुरी हो जाएगी कि उनको एक्सटेंसिवली बोरोइंग करनी पड़ेगी। हालांकि जो सिस्टम एफडी हमने जो 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 हमारी गवर्नमेंट ने चलाया था, जो कांग्रेस की जब गवर्नमेंट थी उसने चलाया था, तो यूपीए की जो गवर्नमेंट थी, तो हमने स्टेट्स को इतना एम्पावर कर दिया था कि वो अपने खर्चे खुद चला सकते थे। अब हालत यह है कि उनको बोरिंग करनी पड़ेगी अपने प्रोजेक्ट्स चलाने के लिए। और भी उन्होंने बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें की हैं, अगर ये आप पढ़ना चाहते हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाके आप ये उनका सारा पढ़ सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त है। और वो वहां पर कह रहे थे कि एक स्टेट जैसे केरला टाइप की एक स्टेट है जो कि बहुत ही ज्यादा रिच इन मिनरल्स और वो सारी थी, और वो उसका डेवलपमेंट बहुत आ सकता था। वो कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये जो केरला और इस तरह की दूसरी स्टेट्स जो हैं अब हैवी बोरोइंग किए बगैर जो है अपने प्रोजेक्ट्स चलाते। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ें। इसी तरह का एक बहुत इंटरेस्टिंग आज एक इंटरव्यू है, द वायर में छपा है, एंड दिस इंटरव्यू इज डन बाय करण थापर साहब। आपको पता ही है कि एडिटर इन चीफ हैं वायर के, और इनकी जो हेडलाइन है आज उन्होंने इंटरव्यू असल में दिया है रिटायर्ड इंडियन चीफ जस्टिस जस्टिस दीपक गुप्ता, उनका उन्होंने इंटरव्यू लिया है गुप्ता साहब का। और इनकी जो आर्टिकल है उसका हेडलाइन है गवर्नमेंट यूजेस सेडिशन लॉ टू क्रिएट फियर, इट शुड बी अबॉलिश्ड। अच्छा, अब जब उन्होंने ये बात कही तो करण थापर साहब ने उनसे पूछा, चीफ जस्टिस साहब से, फॉर्मर रिटायर्ड चीफ जस्टिस साहब जो हैं दीपक गुप्ता साहब, कि सेक्शन 124A ऑफ इंडियन पीनियल कोड, जिसको कि लॉ ऑफ सेडिशन भी कहा जाता है, ये क्या है आप एक्सप्लेन करें। तो जस्टिस दीपक ने अनाउंस किया, उन्होंने कहा कि ये लॉ जो है इसको हमने, उन्होंने जो एक स्पेसिफिक टर्म यूज की है, उन्होंने कहा है कि हमने इसको रीड डाउन कर दिया है और इसकी जो वो है पावर को बहुत लिमिट कर दिया है, और अनलेस एंड अनटिल किसी ने वायलेंस इंसाइट ना की हुए इसको लगाया नहीं जा सकता है, लेकिन इस लॉ में इतने फ्लॉज हैं कि हमने, मैं कहता हूं कि इसको खत्म कर देना चाहिए। तो करण थापर का असल में मकसद इनसे पूछने का यह था कि ये जो हर छोटी छोटी चीज पे, जैसे एक एक्टर है, एक फिल्म स्टार है, एक एनवायरमेंट एक्टिविस्ट है, एक कोई और स्टेज का आर्टिस्ट है, एक जर्नलिस्ट है, वो अपने काम के सिलसिले में लिखा है, उन सब के ऊपर सेडिशन के चार्ज लगा दिए जाते हैं, तो क्या